نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله آپ کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وما أصابك من سيئة فمن نفسك اور جو بھی آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے کوئی تکلیف کوئی نحوست تو یہ سراسر آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے وَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے آپ نے اس کا بہت سمپل سا موضوع ترجمے سے ہی جان لیا ہوگا کہ انسان کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے یہ سراسر اللہ کا احسان ہے اور حقیقت ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے دیا کیا ہے اگر یہ بات کوئی کہتا ہے تو اس کا اندر کہ اس کو اپنی اوقات کا نہیں پتا تو آپ اس وقت اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ آپ کو جو بھی خیر آج تک پہنچی ہے زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر ماں باپ کی محبت بھائی بہنوں کا پیار اسکول ٹیچرز اور باقی ساری چیزیں اور آج تک نعمتوں کے اندر جو پلے ہوئے ہیں یہ کس کی طرف سے ملا یہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں تھا یہ آپ کا میرا حق نہیں تھا یہ آپ کی میری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کسی کے ساتھ یہ سراسر اللہ کی طرف سے ملا اس جذبے کے ساتھ کہیے ذرا الحمدللہ کیا سفر کے مہینے کے بارے میں اللہ نے کچھ کہا نبی نے کچھ کہا آج ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دل کے تار جب اللہ سے نہیں جڑے ہوتے تو انسان نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور بعض دفعہ تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نعمت بھی کوئی نعمت ہے تو یاد رکھیے کہ شکر جو ہم سب دن میں کئی بار کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے اعتراف دو لفظ لکھ لیں آج میں نے اعتراف کرنا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے رب نے دیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی انکساری اور محبت سے اعتراف ہے یعنی اعتراف کرنا عاجزی انکساری اور محبت کے ساتھ جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ نعمت دینے والے کو کہاں پہچانے گا تو پھر اس کا شکر کہاں ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے یہ میری طرف سے ہے پہلے اس کو محسوس کرو بندے کو اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے نا تو اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں ہاں پھر وما صابک من سیئۃ اس پہ تو ہماری ایک لمبی لسٹ کھل جائے گی جو تکلیف سیئہ کلف سو سے ہے سو لاش کو بھی کہتے ہیں سو زنا کو بھی کہتے ہیں بہت کثیر المعنی لفظ ہے یہاں نہیں تفسیر کی کلاس میں انشاءاللہ آپ اس کی ڈیٹیل سنیں گے لیکن بس یہاں آپ سمجھیے کہ سفر کے مہینے کے ناطے سے جو لوگوں نے باتیں گڑ رکھی ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے جو ساتھی پہلے سے اس ذہن کے ساتھ سن رہے ہیں ان کو تو پہلے سے ہی پتا کہ آج ہم سفر کے مہینے کے بارے میں بات کریں گے اور سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے کیا کہا جائے ایسی امت کو کہ جس نے اپنا اسلامی کیلنڈر بنایا بھی تو پہلے مہینے کے ساتھ غم سوگ شادی نہیں کرنی محرم ہے محرم 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 یعنی بچے بھی کہیں گے ماما ہمارے مسلمانوں کے نصیب میں صرف غم ہی ہے محرم کے ساتھ ہی ہم نے غموں کو باندھ لیا غم کے ساتھ چلتے گئے اور جو ہی سفر کا مہینہ آیا تو ہم نے کہا یہ نحست کیا سفر کے مہینے کی کوئی خاص حیثیت ہے یعنی آج جن موضوعات کو میں انشاءاللہ اپنی اس مختصر سی گفتگو میں جمع کرنے کی کوشش کروں گی وہ کیا ہے نمبر ایک کہ کیا ماہ سفر کی محرم الحرام کی طرح کوئی امتیازی حیثیت ہے یا اس مہینے میں کچھ خاص کرنا چاہیے کچھ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح اس لیکچر کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بھی جواب ملے گا کہ لوگ اس کو منحوس کیوں کہتے ہیں دور جاہلیت میں کیا تھا اس پہ تو میں تھوڑی ہی بات کروں گی کیونکہ مجھے تو فکر یہ ہے کہ ماہ سفر اور آج کا مسلمان تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی علم سے دوری میں نے کہا دین سے دوری نہیں کہا اس لفظ کو ایسے ہی لکھیے گا آج ہم دین سے بہت قریب ہیں ماشاءاللہ آج بھی ہمارے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت نماز اور دعاؤں اور اذکار سے ہوتا ہے آج بھی روزہ نہیں ہم کوئی چھوڑتے آج الحمد للہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان ہی سب سے زیادہ دیندار قوم ہے. اللہ کا تصور, رسول سے محبت, آخرت کا غم فکر, جو بھی باقی سارے ادیان سے آپ تقابل کیجئے تو مسلمانوں کو یہ, ہم دیندار ہیں بٹ آج ہم علم دوست نہیں ہیں. تو پھر جملہ دوبارہ بولتی ہوں کہ آج ہماری علم سے دوری نے ہم مسلمانوں کو سال مہینے دن ان ہی کے بارے میں مس انڈرسٹوڈ کر دیا ہے. نا حیرت کی بات, انسان غلطی کھاتا ہے کسی اور چیز میں. میں آپ سے مثال دیتی ہوں کہ آپ سے پوچھے آج کیا تاریخ ہے, آپ میں سے کوئی کہے کہ آج 5 نومبر ہے, کوئی کہتا نہیں میرا خیال ہے 6 دسمبر ہے, تیسرا کہتا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے 6 جون ہے. از اٹ پاسبل؟ ہماری گھڑیاں, ہمارے سیل فون, ہمارے کیلنڈر, ہماری ڈائریاں, کہیں بول کے کہیں کہہ کے سن کے ہمیں سارا دن احساس دلاتے ہیں کہ آج کیا ڈیٹ ہے, کبھی نہیں بھولتے. چلیے میں آپ کو اس بات پہ لے کے چلتی ہوں کہ جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, مجھے بھی بغیر سوچے ایک سانس میں پڑھنا پڑے میں دسمبر تک پڑھ سکتی ہوں. چلیے ہم مسلمان جس کو اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں ذرا ایک اسٹریچ میں پڑھیں. محرم سفر کے بعد آگے اب تیسرا سوچنا پڑے گا اگلے مہینے کے. بہت کم لوگ آج, آپ اپنے لیے کام لکھیں, اپنے بچوں سے جا کے آپ نے سننا ہے کہ 12 مہینے جو لونر کیلنڈر, قمری کیلنڈر کے, وہ بتائیے. پہلی تو یہی ہماری لاعلمی ہے, پھر دوسری بات ہے کہ کسی مہینے کی کیا فضیلت ہے کیا نہیں, اپنی مرضی سے ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ جوڑا ہوا ہے. تو ہمارا یہ جو سلسلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا ہر مہینے کے لیکچرز کی صورت میں, کہ آخر سفر کے مہینے کی کیا بات ہے. پہلا مہینہ غم سے شروع, دوسرا ہمارا منحوسیت کا ہو گیا, تو ہمارا باقی سال کیسے چلنا ہے. اور پھر ایک اور بہت معروف بات ہے کہ اس مہینے میں زیادہ اچھے کام نہیں کرنے چاہیے, شادی نہیں کرنی. آج کے مسلمان سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سفر کا مہینہ کیا ہے, تو لوگ کہیں گے منحوس ہیں, اس مہینے سفر پہ نہیں جانا. پہلے 13 دن تو بہت ہی تیزی کے, 13 تیزی ہے. کوئی شادی کا کام شروع کرنا ہے تو سفر کے مہینے میں شروع نہیں کریں گے شاپنگ. لڑکی دیکھنی ہے تو لڑکی نہیں ابھی دیکھیں گے, اور خاص طور پہ 13 دن, 14ویں کے بعد جائیں گے. اور سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں, 365 دنوں میں جو بلائیں اترنی ہوتی ہیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ساری سفر کے مہینے میں اکٹھی ہو چکی ہوتی ہیں, لہٰذا 365 کے لفظ کو بڑا اہم سمجھیں گے آپ لوگوں سے. میں نے بھی ریسرچ کی کیا الٹے سیدھے لوگوں نے وظائف کیے ہوئے بنائے ہوئے. میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سارے مسلمان جو آج 1.8 بلین سے زائد مسلم ہیں, اگر یہ دین ہوتا اور یہ سب کو کہا جاتا کرو, تو آج دیکھیے کہ میرا حال سینکشنز لگ چکی ہوتی ہیں مسلمانوں پہ. کہتے ہیں کہ 365 دانے لے لو, چنے لے لو, آٹے کی گولیاں بنا لو, پھر اس کو اپنے سر سے بارو. کوئی کہتا ہے لیمو لے کر, لیمن جو ہوتا ہے اس کو ہر دن کے حساب سے ایک لیمو لو, پھر اس کو اپنے سر سے گھلا گھلا کے جا کے پانی میں ڈال دو. اب مجھے بتائیے کہ مچھلیاں آٹا کھاتی ہیں؟ انسانوں کو تو آٹا نہیں ملتا. پھر یہاں تک بھی نہیں رکے ہم لوگ, شادی نہیں کرنی, کاروبار نہیں کرنا, جاب نہیں ڈھونڈنی, اگر کرا ہے اور صبح اٹھ کے گھر سے میٹھا نہیں کھایا تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد آخری بدھ سفر کی مہینے کی, اس کو کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے, اس دن خوشی مناؤ. لوگ باغوں میں جاتے, گھومتے, کھاتے پیتے, اور متھ کیا ہے کہ جو کام کروانے والے لوگ ہیں وہ اپنے امپلائیز کو اس دن چھٹی دیں, نہ دیں گے تو یہ سارا سال ان کے اوپر وبال پڑے گا. یہ سب کس نے دیا, سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ یہ چند باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر رہی ہوں, اور پیچھے مہینے میں بھی الحمدللہ آپ میں سے کافی ساتھی مجھے دیکھے اس واقعے میں بھی, تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم پیچھے دیکھتے ہیں مڑ کے, یہ کس نے کہا؟ کیا آپ ایسے کہیں جا کے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں؟ نہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں سٹاپ سائن ہے, یہاں ریڈ سائن ہے. تو دین کے معاملے میں ہم سب کیوں؟ تو اس پہ میں نے آج زیادہ بات نہیں کرنی, اس لیے کہ محرم کے لیکچر کے شروع میں اس پہ سر حاصل بحث ہوئی تھی, لیکن جو چند نئے ساتھی ان کے لیے بھی بتا دوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج کے دن تم پر دین پورا ہو گیا. جس طرح کسی ملک میں جا کر آپ وہاں اپنی مرضی کے قوانین نہیں بنا سکتے, یہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو, بلکہ مانتے ہیں. میں اور آپ ناروے میں آنے پہ مجبور نہیں کیے گئے, لیکن یہاں کے قوانین ہمیں ماننے پڑیں گے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ کسی کو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں بناتا, لیکن جب آپ ایک دفعہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, तो उस डिक्लेरेशन ऑफ फेथ के बाद सारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। हमारा हाल क्या है कि हम इस डिक्लेरेशन के बाद फारिग हो जाते हैं। आज भी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल में जो लड़कों की क्लास हो रही है इस वक्त भी नीचे, तो उसमें आज एक अर्ली टीनेजर तो वो शहादा लेने लगा है। शहादा, अशहद अल्लाह अकबर, तकबीर, खाना खिलाओ, बैठो, उसके बाद हम सब छुट्टी हो गई, घर चले जाए, वो खड़ा देख रहा है अब मैं क्या करूं। मुसलमान बनने के बाद सबसे पहला काम इल्म है। उसको पहले से बताओ तुमने क्या करना है, तहारत के क्या मसाइल है, अगली नमाज पढ़नी है, हलाल क्या है, हराम क्या है। आज हम मुसलमान इसका बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हैं कि हम चूंकि मुसलमान घरों में पैदा हो गए, दैट्स इट, इतना ही काफी है, और क्या करना है। तो इल्म के साथ जरूरी है कि इंसान दीन को ले। लेकिन अब आप कहें कि आज शहादा दी उस बच्चे ने, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। मामला तो शुरू हुआ। आप उस एम्प्लॉय को क्या कहेंगे कि जो 2-4 हफ्ते की मुसलसल मीटिंग्स और इंटरव्यूज के बाद जॉब हासिल करे, और जिस दिन उसको एग्रीमेंट मिले और उसका जॉब डन हो, अगले दिन से आई ना, अब मैंने क्या करना है। भैया आपने कहा था कि आप कल 9 बजे आएंगे इधर, तो आप किधर हैं। तो हम मुसलमानों के लिए ये एक लम्हा फिक्री है। आज जो नए इस्लाम में आते हैं, मैं कहती हूँ वो ज्यादा कॉन्शियस हैं, उनको ज्यादा फिक्र लगी हुई है कि हमें कुछ सीखना है। हम मुसलमान इसी पे बड़े खुश हैं कि हमें पता है कि इस्लाम क्या होता है। तो बहरहाल इस्लाम बन चुका है, इस्लाम का कमरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सफर के महीने की क्या बातें हैं, थोड़ा सा मैं आपको तारीख के आईने में ले चलती हूँ। इस्लामी साल का दूसरा महीना, 12 महीने शुरू से रहे, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना शरा शहरन, अल्लाह ताला ने कहा कि महीने तो साल के 12 ही हैं। पीछे भी बात हमने की थी कि शुरू से 12 है। आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहेंगे तो भी 12 है, और अगर मुहर्रम, सफर, रबी अलव्वल, रबी उस्सानी, जमादी अलव्वल, जमादी उस्सानी कहेंगे तो भी 12 है, और इसी तरह पंजाबी में चेत, वसाख और ना क्या जो पंजाबी के महीने हैं 12, इसमें कोई शक नहीं। ये कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली ये बात बता दी है, ठीक है। अब इन जो 12 महीने हैं, इनके ये इनका तذکرہ अगर आप कुरान में पढ़ना चाहें, कोई आपसे पूछ सकता है कैसे पता चलता है कि ये शुरू से, तो सूरह तौबा आयत नंबर 36 को रख लीजिए कि ये ऐसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में मबूस किए गए वो मुशरिकीन का मुआशरा था, नाम के मुसलमान थे, नस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे, लेकिन तालीमात बिल्कुल महव हो चुकी थी। तो मुशरिकीन सफर के महीने के बारे में क्या कहते थे या कैसे करते थे, जब इस्लाम आया, ये जो मैं इस्लाम आया कह रही हूं ना, तो इसको समझिएगा कि इस्लाम तो शुरू से ही था, नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही, आदम से ही ये सिलसिला चला है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले नबूवत का तार टूट चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी सल्लम के बीच में कई सदियां गुजर चुकी थी, इंसानियत पे अंधेरे छा चुके थे, लोग इस्लाम की असल से बिल्कुल दूर हो चुके थे। तो लिहाजा जब अल्लाह ने अपने नबी को भेजा मक्का में, तो एक एक करके फिर हर चीज रिवाइज हुई थी। वो चीजें जो मक्का वालों की, इब्राहिम, इस्माइल और बाकी अंबिया के तरीके की थी, उनको नहीं छेड़ा गया, उनको गो अहेड दे दिया, इट्स फाइन, बस डबल चेकिंग हो गई। लेकिन जो चीजें गलत थी उसको गलत क्या चेंज कर दिया। हुआ क्या कि जब नबी सल्लम का दौर आया, तो सफर के महीने के बारे में मुशरिकीन की दो बिदात बड़ी आम थी। लिखिए, हिस्ट्री से शुरू करते हैं, थोड़ा सा चलेंगे तो आज पे खुद भी आ जाएगी बात। मुशरिकीन क्या करते थे, नंबर एक कि वो सफर के महीने को अपनी मर्जी से आगे पीछे करते रहते थे, जैसे कि उन्होंने मुहर्रम की बजाय माहे सफर को हुरमत का महीना करार दिया। नसी की बात मुहर्रम के लेक्चर में भी हुई थी, आपको याद होगी, 3 मुसलसल महीने यानी सफर के महीने से पीछे मुसलसल 3 महीने हुरमत वाले हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम। इन 3 महीनों में लड़ाई, झगड़ा, मार कुटाई, लूट मार सब खत्म थी, ठीक है। तो ये लोग 3 महीने थक चुके होते थे, क्या करते थे, कभी कभी मुहर्रम के महीने को कहते नहीं ये मुहर्रम नहीं, ये सफर आ गया, ताकि हम लड़ भिड़ लें, लूट मार कर लें। और जब सफर आएगा तो बाज कहते कि अब ये मुहर्रम है, एक बिदत। दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब एक सीधी चीज नहीं तो 10 झूठ बोलें, 11 बोलें, 12 बोलें, बाज वक्त कहते नहीं वो भी सफर था और अब अगला भी सफर है, तो 2 सफर मनाते थे उस महीने पे, ये भी एक इनकी बिदत आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह इनमें से बाज लोगों का अकीदा क्या था कि हज के महीनों में उमरा करना बहुत गुनाह है, गुनाह मनसूबा कहते थे हज के दिनों में उमरा नहीं हो सकता। हालांकि आज भी आपको पता है कि जो हज नहीं करता और लोकल वहां रहता है वो जाते हैं, लोग हर वीकेंड पे जाते हैं लोकल, उमरा करके आ जाते हैं। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत, और मैं जो बता रही हूँ ये सही रिवायत है, सबके रेफरेंस मेरे पास मौजूद है। बोझल होने के डर से शायद मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन आप बाद में मुझसे मांग सकते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अरब हज के महीनों में उमरा करने को जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह समझते थे। किसने कहा, कहाँ का, क्या हरज है, ये कोई नहीं पता। मेन मेड शरीयत जब होती है तो ऐसे ही होता है। लिहाजा वो सफर को हुरमत वाला महीना बनाकर कहते। इनका जुमला क्या आता था, इजा बराअत दबरु व अफल असरु वन सलखा सफरु हल्लतिल उम्रतु लिमने तमरा। उर्दू में तर्जुमा बताऊं, कहते थे जब हज के सफर की वजह से सवारियां जख्म खुर्दा होकर चल चल के ऊंटों के पाँव में बाजुबा छाले पड़ चुके होते थे, ये जख्म हो जाते थे, कहते हैं जब सवारियां जख्म खुर्दा होकर शिफा याब हो जाएं, जख्मों के निशानात मिट जाएं, सफर गुजर जाए, तो उमरा करने वाला उमरा कर सकता है। समझ आई आपको बात? यानी कहते थे हज करने की वजह से सवारियां इतनी थकी हुई हैं कि अब इनको दोबारा उमरा करने के लिए ना लाओ। और ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है 1489 और 1240 नंबर की, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये एक खाम खा का तकल्लुफ था, अल्लाह ने ऐसा नहीं रोका। फिर इसी तरह से एक और इनकी उस दौर की आदत क्या थी कि माहे सफर को उसकी असल जगह से इधर उधर कर देते थे। और वो क्या होता था कि एक शख्स था, ये भी रिवायत इब्ने अब्बास से, जुनादा बिन औफ उस नाम शख्स का नाम है, कहते हैं कि ये हर साल हज करता और ये सदा लगाता। अब देखिए हज हो रहा है, वहां उस वक्त में माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर तो नहीं थे, लेकिन ये हज के दौरान सदा लगाता अबू सुमामा, यानी जुनादा की कुनियत, इसकी अपनी कुनियत थी, इस पर कोई उंगली ना उठाए ना इसकी बात को रद्द करने की कोशिश करे। पहले साल में माहे सफर को हुरमत वाला महीना शुमार नहीं किया था, इस साल हम इसको हुरमत वाला करार देते हैं और एक साल नहीं करते। यानी आप अपना स्नैरियो इसका समझें, दो तीन मुख्तलिफ रिवायतों का खुलासा है। इनका एक सरदार हज के दिनों में जाके ऐलान लगा देता था, उसकी मर्जी थी। जैसे आज हम कहते हैं ना कि दीनदार ने कह दिया है और मौलवी साहब ने जो कह दिया बस काफी है, तो ये शख्स सबकी तरफ से जाके अनाउंस करता था एक किस्म का कि चलो भाई इस साल सफर है और इस साल सफर नहीं है। और कहते हैं एक साल हर साल जाता था तो एक साल जाके लोगों को कहता कि जी इस साल ये सफर का महीना हुरमत वाला है, अगले साल जाता कहता अब इस साल हुरमत वाला नहीं है, तीसरे साल जाता तो फिर कहता कि ये हुरमत वाला है। ये बेकार बातें थी, यानी मन घड़त किस्म की चीजें इसमें मौजूद थी। फिर इसी तरह से बाज लोग मुहर्रम, जीका, जिलहज और मुहर्रम के साथ सफर को भी हुरमत का महीना बना देते थे, इसकी भी दलील मौजूद है। कहते थे कि तीन मुसलसल नहीं बल्कि चार महीने मुसलसल ये आएंगे, लेकिन कहने की बात यह कि ये सिर्फ उनकी बातें थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुबहाना ताला ने इनकी ये मैन मेड चीजों को खत्म किया। आम तौर पे सफर का महीना स्वाद फा रॉ है, अगर आप इसको देखें तो सिफर सफरा सिफरा सिफर सीन नहीं स्वाद है ये लफ्ज, आप लोग इस पे थोड़ा सा गौर करें। सिफर किसको कहते हैं, नथिंग। अरब लोग सफर के लफ्ज को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, खाली होने को, उसी से पिशाज ये लफ्ज सफर और सिफर बन गया। आम तौर पे इस नाम की वजह तस्मिया जिसको आप बोलते हैं कि वजह क्या थी कि ये लोग जब तीन महीने मुसलसल घरों में रह चुके होते हुरमत के महीने की वजह से, तो इस महीने के चांद के देखते ही घरों से निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये इतनी लूट मार आम हो चुकी थी कि लोग यानी आम दिनों में तसव्वुर भी नहीं करते थे कि वो बाहर निकले, सब घर से निकल गए। आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे रमजान के बाद सबका दिल करता है फेरिये पे चले जाए, मर्द घरों से निकल आते, औरतें घरों से निकल आती और घर खाली हो जाते। तो कहते सफर अल मकान, घर खाली हो गया। बास कहते हैं कि इस एक महीने को सफर इसलिए कहा जाता है कि इतनी लूट मार शुरू हो जाती थी कि लोग कहते थे तुम्हारी कमाई सिफर हो जाएगी। बात समझ रहे, ये अब इनकी बातें हैं जो आप कह लें इसके अंदर समझ लीजिए, यानी इस किस्म की उल्टी सीधी बातों को करके इसके नाम के साथ सफर, और साथ ही फिर तवहमात बदगुमानियां बदशगुनियां कर दी। कोई कहता है इस महीने शादी ना करो, कोई कहता चने उबाल कर मोहल्ले में बांटो ताकि हमारी बलाएं जो है वो खत्म हो जाएं, और कोई आटे की 365 गोलियां चलाते हैं तालाबों में डालो, और कोई सूरत मुजम्मिल का खत्म करते हैं 311 बार और ज्यादा पढ़ते हैं, मर्दों पे भारी, उस पे भारी, इस पे, तो इस्लाम ने इन सारी चीजों से रोक दिया। तो हम इस वक्त इस मौजू पे बात करने की जरूरत करते हैं कि जब ये सब कुछ उस मुआशरे में था और इस्लाम के जरिए अल्लाह सुबहान तआला ने इन चीजों का इजाला फरमाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के महीने में क्या करते थे? सीधी सी बात, हमारा सादा सा सवाल है, हम आम लोग हैं कि भाई क्या करना है, तो सीधी सी बात है कि सफर के महीने में कुछ भी नहीं करना। खास आम महीनों में कुछ ना बात होती, जैसे रमजान के साथ रोजों का तस्वर है, जिलहज के साथ हज का जिक्र आ जाता है, अगला महीना इंशाल्लाह रबी अव्वल का आला जो नबी सल्लम की पैदाइश और वफात का महीना होगा। सफर के महीने में कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई खास रोजा रखने का कहा, ना इस दिन कोई खास इबादत की बात है, ना इस दिन कुछ पढ़ना, ना कोई कुछ करना, इसकी कोई भी शरई तौर पर ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लेकर चले। इबादत के एतबार से ये आम महीना है, जो पांच वक्त नमाजी है वो इस महीने में भी होगा, जो मंडे थर्सडे का रोजा रखता है वो इस महीने में भी रखेगा, उम्रे पे जाना है चले जाइए, हज पे जाना है हज तो हो गया, यानी आप हर नेकी कर सकते हैं, दरवाजा आपके लिए खुला है। ये जो बात मैंने आपको भी बताई है ना कि ये अपनी मर्जियों से इधर उधर की बातें कर लेते थे, बहुत ही दिलचस्प बात है, शायद आप में से किसी ने पहले ना पढ़ी हो कि जब ये इसको नसी कहते थे ना, सूरह तौबा की आयत 37 में ये आयत बात आती कि इन्नमा नसीउ ज़ियादतुम फिल कुफ्री, महीनों का आगे पीछे करना कुफर के एतबार से ये ज्यादती है। मजे की बात है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन इतना नहीं बिगड़े कि जिलहज की बजाय हज जो है हम सफर में कर लें। अरब लोग हर 3 साल के बाद एक महीना बढ़ाते थे ना, तो हर साल हज मुख्तलिफ महीने में होता था, ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर अगले 3 माह बाद आप बदलेंगे तो जून के महीने को आप कुछ और कहेंगे, लेकिन वो जून के ना, तो हुआ क्या, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हज मुख्तलिफ महीनों में होना शुरू हो गया। असल में वो जिलहज का हज कर रहे होते थे, लेकिन उस महीने में जिलहज नहीं होता था, जिलहज की बजाय जीकात, जिलहज कभी हज मुहर्रम में आता, फिर उससे अगले साल हज सफर में आता, फिर उसके बाद हज उससे अगले महीने में रबी अव्वल में आएगा, रबी सानी जमादी उलूला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपको एक बात बताऊंगी जिसमें आपको अल्लाह की हिकमत भी समझ आएगी। मेरे जहन का ये सवाल था, शायद आपका कभी उभरा हो तो आज आप खुश होंगे। मैं अक्सर सोचती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे, तो पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ एक ही हज क्यों किया? ये बात आपको पता है ना, जिनको नहीं पता उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हज क्यों एक ही दफा किया। आप यहां आज उसका जवाब लीजिए। एक तो ये कि आखिर में हुआ, उसके बाद तो आपको इतना मौका ही नहीं मिला जीने का, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ? हज उलट महीनों में हो रहा था, ये अल्लाह ने अपने नबी को बचाया कि वो एक साल सफर में हज किया, अगले साल रबी अव्वल में करेंगे, अगले साल रबी सानी में करेंगे, जमादी उलूला जमादी उसानी, पूरे 12 साल से उनका जो पिछला सर्कल था ना वो गलत चल रहा था, घूम घूम के जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, इत्तफाक देखिए कि दोबारा हज जिलहज में ही हो रहा था। सबको बात समझ आ गई है जी? ये अल्लाह ने अपने नबी को बचाया, तभी तो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज का वो आखिरी खुतबा सुना होगा ना कि लोगों जमाना घूम कर वापिस उसी जगह पे आ गया जहां से शुरू हुआ था। उसमें ये बात थी क्योंकि जिल हज अल्हम्दुलिल्लाह उस महीने ठीक हज हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत महीने में हज नहीं किया। तो याद रखिए, जब लोग अपने दिल की बातों से दीन को इंटरप्रेट करने लगते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। तो इन सारी चीजों को अल्लाह सुबहान तआला ने इधर रोका। फिर अगली बात यह है कि इन लोगों ने इसके बारे में क्या मनहूसियत रखी हुई थी। तो सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, वो हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, बुखारी का रेफरेंस लिख लें 5387 और सही मुस्लिम में 2220 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया कि बीमारी खुद बहुत मुतदी नहीं होती, ये जो आप कहते हैं ना कि बीमारी लग जाती है अछूत होना, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है और ना ही सफर के महीने में कोई नसोनहूसत है, कोड़ी के मरीज से ऐसे दूर रहो जैसे शेर से दूर रहते हो। सफर के महीने को इस हदीस में नबी सल्लम ने क्या बताया कि ला सफरा, सफर का महीना कुछ नहीं होता। आपका मेरा तोहम अगर वहम ये है ना कि अगर इस महीने मेरे साथ कोई गड़बड़ होनी है तो वो आपके एतकियाद के तौर पे हो जाएगी आपके साथ, अदरवाइज वो नहीं होनी थी। तो आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि क्या कोई महीना दिन साल मनहूस भी होता है, क्या इसकी कोई हैसियत है। सूरत बनी इसराइल आयत 12 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वजअलन लैल व नहार आयतैन, हमने रात और दिन को दो निशानियां बना दिया। رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم سال کی گنتی اور حساب جان لو. کوئی دن اور کوئی رات منحوس نہیں ہے. 365 دن, ہر سورج کا نکلنا اور ہر چاند کا آنا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. مان سکتے ہیں کوئی چاند نکال سکتا ہے اگر اللہ نہ نکالے؟ رات دن سے دن رات میں بدل سکتی ہے. تو اب پورے سال میں 365 بول رہی ہوں میں, آپ لکھئے کوئی رات اور کوئی دن منحوس نہیں ہے. کیا اللہ منحوس بنائے گا؟ جب کوئی رات نہیں ہے تو دن نہیں ہے, تو رات اور دن سے مل کے کیا بنا؟ ایک پورا دن. دنوں سے ہفتے, ہفتوں سے مہینے, مہینوں سے سال. تو کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ, کوئی سال, کوئی 10 سال, کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا. یہ مان لیجئے گا بات. یہ زمانہ ہے, اللہ نے اس کو بنایا, یہی ماہ و سال ہے جس کو برا کہنے سے روکا. حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب پتا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, یعنی بیچ میں جبرائیل نہیں ہوتے. عام طور پہ جب وحی آتی تھی اس میں جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے. تو صحیح بخاری میں روایت ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم, مجھے تکلیف دیتا ہے آدم کا بچہ. کس کو؟ اللہ کو. کیسے؟ یسب الدہر, زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر, اور میں دہر ہوں, یعنی میں زمانے کو بنانے والا ہوں. بیدی الامر اکلب اللیل والنہار, میرے ہاتھ میں ہر کام میں, میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. تو کیا پتا چلا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے پاکستانی کلچر میں بھی ہے. آج کل زمانہ بہت برا ہو گیا, نہیں کہنا چاہیے. زمانہ برا نہیں, ہمارے کرتوت برے ہیں. ابھی میں بتاتی ہوں کہ منحوس ہوتا کیا ہے. زمانہ برا نہیں ہوتا. ایک دفعہ کوئی شخص جا رہا تھا تو ہوا چلی اور اس کی چادر کھل گئی, تو اس نے ہوا کو لانت کی. تو آپ نے فرمایا یہ لانت پلٹ کے اس کے اوپر پڑی ہے. ہوا کو کیوں لانت کرتے ہو؟ یہ تو اللہ نے پیدا کی ہے, تم خود اپنا خیال رکھو. رائٹ. تو اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہے. یہ لکھ لیں. نہ جانور, الو, بلی, بکری, طوطا, کوئی جانور منحوس نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسان منحوس نہیں ہے. اپنے نفس کے اعتبار سے کوئی منحوس نہیں. پھر آگے لکھ لے کہ عورت اور مرد, اس کے یعنی عورت کا تقابل مرد سے یا مرد کا تقابل کرے عورت سے, کوئی عورت منحوس نہیں ہے. نہ عورت, مرد منحوس ہے. ہمارے ہاں کتنی بری گالی دی جاتی, منحوس عورت, یہ منحوس میرے پلے پڑ گیا تھا. کوئی منحوس نہیں ہے. وقت اور زمانے کو تو دوسری طرف کر دیجئے. یہ جو چاند ہے نا جس کے ساتھ میں اور آپ چل رہے ہیں قمری کیلنڈر, یہ چاند کی مختلف کیفیات کے بدلنے کا نام ہے. سورت بقرہ آیت 189 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یسألونک عن الأہلہ, یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں, یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے, اس کی مختلف کیفیات کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دیجئے کہ یہ تو لوگوں اور حج کے اوقات ہیں. تو یہ کالمی کیلنڈر ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اہتمام کیا تاکہ حساب پتہ لگے. لیکن اب آپ سب کو آج کی ڈیٹ پتہ تھی تو اب آگے نا, اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ 5 کیا کب ہوتی ہے یا کب ہوگا, دن کیا ہوگا, تو آپ نہیں آ سکتے. دیٹس اٹ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی چاند کا بٹنا, گھڑنا, کم ہونا, زیادہ ہونا, اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں. ہمارے کلچر میں کہتے ہیں ستارے گردش میں, اور جب میں پیدا ہوا تھا تو ستارے گردش میں تھے. یہ آج کتنا معروف ہے زائچہ دکھانا, پامسٹری اور جنتری اور اس طرح, اور کیا لفظ بولتے ہیں, کہانت. آپ دیکھیے ہماری مسلم یوتھ جو ہے قرآن صبح اٹھ کے پڑھے نہ پڑھے, وہ یہ صفحہ ضرور پڑھیں گے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. لوگ رشتے کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سٹارز دیکھتے ہیں. سنی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ یہ سب ان اسلامک ہے. نہ ستاروں کا آپ کی زندگی پہ اثر ہے. جب میں پیدا ہوا تو ستارے ہی ڈوبے ہوئے تھے, وہ تو گردش میں ہے, گردش زمانہ. نتھنگ, اس میں سے کچھ بھی چیز اسلامک نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں میرے آپ کے لیے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ آئی فون ہے, تو آپ کہتے ہیں آئی فون 3 منحوس تھا, اور یہ آئی فون 7 بالکل بہت ہی زیادہ منحوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ میرے بچے کو دین سے دور کر رہا ہے. آئی فون میں کیا قصور ہے؟ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں. تو کوئی چیز اپنی اصل کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. اس لیے اس مہینے کے ساتھ کوئی وہم پالنا, کوئی شگون لینا, یہ درست نہیں ہے. عرب لوگوں میں تھی کیونکہ علم نہیں تھا, نبی نہیں تھا. آپ کے میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے, تو لہٰذا آپ کے میرے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی محسوس کریں جیسے کہ کچھ بھی نہیں. عرب لوگ کہا کرتے تھے بیت صفر من المتا, گھر سامان سے خالی ہو گیا. جیسے آپ سامان اٹھا لیں تو گھر خالی ہو جاتا ہے نا, अच्छा, इसी से लफ सफरा भी है, आपने सुना है सफरा की बीमारी, सोकड़े की बीमारी, खाली होना, जर्द होना, किसी चीज का पीछे हो जाना, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो अरब लोगों में होता क्या था कि 3 महीने हुरमत के गुजरे, अब लूट मार हुई, मर्द कत्ल होने लग जाते थे, घर बर्बाद, और घर घर बर्बादी हो रही है। कहते थे घर वक्त हमारे लिए मनहूस है। हालांकि आप देखिए कि किसी के लिए अगर एक चीज मनहूस होती है तो दूसरे के लिए फायदे वाली होती है। मसलन कौमों पे अजाब आए, अब जिस दिन किसी कौम पे अजाब आई, आप पढ़ेंगे कुरान में इंशाल्लाह कि एक कौम के ऊपर अजाब आया बुध के दिन, तो वो कहते हैं बुध का दिन मनहूस है। लेकिन जिस कौम पे अजाब आया तो नबी के साथ ही बचाए भी तो गए ना। मसलन आप देखिए कि फिरौन डूबा, बुरी बात है, फिरौन के लिए वो दिन अगर लिखा जाए तो बड़ा मनहूस दिन था, लेकिन बनी इसराइल को निजात भी तो मिली ना। तो ना वो दिन बुरा था ना अच्छा था, फिरौन के करतूत बुरे थे, उसके लिए मनहूस हो गया। जिस कौम के दिन अच्छे थे उनके लिए ये चीज अच्छी हो गई। असल में अल्लाह ताला चाहता है कि मैं और आप अपने अमलों की फिक्र करें। तो अब वो सवाल जिसको कब से रोके बैठी हूं कि फिर असल में मनहूसियत क्या होती है, मैं नहीं इसका जवाब दे सकती, कुरान देगा। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 13 और 14, वकुल्ल इंसान इन अल्जमना हु तायरहु फी उनुके, और हर इंसान के गले में हमने इसका शिगून लगा लिया। ये जो तायरा है हुए ना, इसको आप थोड़ा सा समझें। तैर कहते हैं परिंदे को, तैयारा कहते हैं जहाज को, यतीरु कहते हैं परिंदे का परों का ऐसे झुका लेना। नामे आमाल ये जो मेरे आपके गले में एक लॉकेट की सूरत में डाला गया ना, इसको तायर का लफ्ज कुरान में कहा गया। सवाल पैदा होता है कि नामे आमाल को तायर क्यों कहते हैं, क्योंकि परिंदा हाथ में है ना, तो आप कह एक दफा हाथ खोलेंगे ना तो उड़ जाएगा। मेरा आपका अमल जब तक हमने नहीं किया हमारे हाथ में, हम करें बुरा काम ना करें, शिशपन चल रही है, ये देखू ना देखू, देखू ना देखू, देखू ना देखू, देखू ना देखू, पूरा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल करें, आप रुक रहे हैं, मैंने नहीं देखना, मैंने इस चीज से पीछे होना है। एक दफा आपने देख लिया, परिंदा उड़ गया, अब वो अल्लाह की अदालत में जाएगा। फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व शर्रन यरा, तो जब कोई अमल हो जाता है ना तो मेरे आपके हाथ से निकल गया, इसलिए इसको ताहिर कहते हैं। और इसी तरह से ताहिर क्यों कहा गया नामे अमाल को, अब जरा अगर आप मेरे इस चीज को देखिए, मसलन हम ये देखते हैं क्यामत के दिन क्या होगा। हदीस में आता है कि वह नुखरिजु लहू यौमल क्यामा, हम क्यामत के दिन इंसान के नामे अमाल को ऐसे खोलेंगे, किस सूरत में, किताब ही, एक किताब की सूरत में, जैसे ये एक छोटी सी डायरी खोल लेते हैं, एक किताब की सूरत में, यलकाहू वो पाएगा उसको, यानी मैं इसको कैसे पाऊंगी, मंशूरा खुला हुआ, ये क्लोज्ड बुक नहीं होगी, ओपन बुक होगी, और पीछे से फरिश्ते कहेंगे इकरा, मुझे कहेंगे पढ़ किताब का, अपनी इस किताब को, कफा भी नफसी कल यौम अलैक हसीबा, आज के दिन तो अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। यानी मेरे आपके सारी जिंदगी के जो अमल है ना, सारी जिंदगी ये मेरे गले में होते हैं, क्यामत के दिन एक किताब की सूरत में होंगे और कहा जाएगा पढ़। और ये पढ़ने का या देने का अमल कैसे होगा, पिछले पारे के अंदर 2-3 सूरतें आपको जुबानी याद होगी, फम ममनूत या किताब बहू भी यमीन ही, और दूसरी जगह शिमाल ही है। होगा क्या, क्यामत के दिन बुलाया जाएगा, क्या हो अपना नामे अमाल लो, सारी इंसानियत के नामे अमाल एक पेपरों के छज्जों की सूरत में यूं उड़ाए जाएंगे, खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से जो नेक लोग हैं ना उनके उनके दाएं हाथ में आ जाएंगे, और जो काफिर फाजिर बद है ना उसके जब बाएं हाथ में आएंगे ना तो वो नहीं लेगा, तो अपना हाथ पीछे करेगा, तो हाथ से वो नामे माल उड़ के पीछे से जाके उसके हाथ में दिया जाएगा। इसीलिए एक जगह कुरान में आता है फम्मा मनूत या किताब बहु बिशिमाली ही, और एक जगह क्या आता है ऊत या मिम वराई जहरी ही, तो नामा अमल उड़ा के दिए जाएंगे। असल न हो सक, इसी से फिर तायर, अरब लोग परिंदे उड़ाते थे, जिसको आपके दौर आज के दौर में हम कहते हैं ना फाल निकालना, कोई काम करने से पहले फाल निकालते थे, एक परिंदा लेते और उसको कुछ भी अमल, मिसाल है कि सफर पे जाऊं कि ना जाऊं, तो वो उस परिंदे को लेते और उसको कहते अच्छा जाऊं कि ना जाऊं, खुद से ही अज्यूम करते कि परिंदा अगर मैं छोड़ूंगा तो ये इधर चला गया ना, राइट ले लिया, तो फिर इसका मतलब ये है, इशारा है कि मैं ये काम कर लूं, और परिंदा अगर उधर चला गया तो इसका मतलब कि मैं ना लूं। परिंदे को क्या पता, उससे ज्यादा अकल तो आपको है। अब हुआ कि वो परिंदे को उड़ाते, परिंदा हवा के रुख पे कभी सीधे पे जाता, कहते एफल एफल कर ले, और अगर परिंदा बाएं पे जाता कहता ना कर, अच्छा सीधा चला जाए, फिर दोबारा सट्टा करते, इसको कहते थे फालगिरी, और ये इस महीने के सबत ही। इस्लाम क्या कहता है,
फाल निकाल सकते हैं?
नहीं निकाल सकते, शिर्क है। सहाबे कराम ने जब मुहर्रम ये सफर के और इन सारी बातों की बातों को सुना तो परेशान हो गए, कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ऐसे काम करते थे जब हमारे पास इस्लाम नहीं आया हुआ था, तो हम तो ये काम करते थे। जैसे आज के इस लेक्चर के बाद आप में से बहुत सारी सिस्टर्स को कुछ चीजों पे एहसास होगा कि अच्छा, मेरी तो दादी ऐसे करती थी, मेरी तो नानी ऐसे करती थी, अब क्या करें, वक्त तो पीछे नहीं आ सकता। तो नबी सल्लम से ये सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी, ये सब कुछ तो हम करते थे, तो आपने कहा अब क्या करें, अब इसका इलाज है, रेमेडी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आपने कहा अगर तुम अपनी पिछली जिंदगी में इसमें से कुछ कर चुके हो तो फिर कहो। क्या कहो? दुआ सिखाई आपने, अल्लाहुम्मा, आप भी मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। तर्जमा क्या है? अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ला खैरा, कोई खैर नहीं है, इल्ला मगर सिवाय, खैरों का तेरी खैर के, जो तू अता करे खैर वो है, मतलब ये कि खैर तेरे सिवा कोई नहीं देता। वला तैरा, और नहीं कोई बदशगुनी, इल्ला तैरुक, मगर तेरी तरफ से, किस तरह, तेरी फाल के अलावा कोई फाल नहीं, वला इलाहा इल्ला गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो आपने कहा कि ये दुआ कसरत से पढ़ो, आप भी ये दुआ याद करें और इसको साथ रखें, जिंदगी में किसी मौके पर अगर वाकई कोई हमसे कमी बेशी हुई है तो इंशाल्लाह ये कफारे होंगे। किसी चीज को कुछ भी आप अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते ये सोचकर कि जी ये होना था, ये करना था, ये मेरे से हो गया, हो गया तो हो गया। आपने फरमाया कि जो बदशगुनी की वजह से किसी काम से रुक के वापस आ गया, उसने शिर्क किया। मसलन आप घर से निकले, बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे थे, एकदम काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई, तो आप कहते वापस चलो, ये बिल्ली गुजर गई है, अब जाऊंगी तो पता नहीं इस रिश्ते में खैर नहीं होगी, आप पलट आए। छोटी सी बात है, आज बड़े लिबरल लोग हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि ये शिर्क है। देखिए तवक्कुल अल्लाह पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो काम दिया था वो क्या था? सूरत माईदा 867 में आता है, या युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी इनको पहुंचा दें जो आपके पास आपके रब की तरफ से भेजा गया, वह लम तफल, अगर आपने ये काम ना किया, फमा बल्लगत रिसालतहु, आपने पैगाम ही नहीं दिया रिसालत का। यानी आज अल्लाह मुझे आपको ये कह रहा है कि अगर हम ये सारी बातें उम्मत तक नहीं पहुंचाते, हमें पता है ये बातें और हम नहीं पहुंचाते, कल पकड़ हो सकती है, अल्लाह ताला हमसे पूछ लेगा। तो लिहाजा ऐसी चीजों को छुपाना ये दुरुस्त नहीं है। इस सारी चीजों को इंसान को समझना चाहिए। कल हमारी इधर एक सिस्टर ने खुद ही कहा, पता नहीं उनको लगा या हकीकत थी, लेकिन वो कह रही है कि मैं बस पे से उतरी हूँ और मैंने एक मुस्लिम फैमिली रहती है, उधर से देखा है एक यंग लड़की निकली है, और जिस तरह से भी वो थी जिस हालिये में, लेकिन आके उसने तो कुछ लीमू थे उसके हाथ में और उसने इस तरह अपने सर पे यूं यूं फेर के तो उनको पीछे फेंका, तो वो ये अमल करके चली गई। तो कहती मैंने अपने बच्चे को भेजा, देखो क्या कर, ये क्या छू फेंक के गई, तो बच्चा कहता ये सितरून है। तो ये बात तो मैंने आज खुद भी पढ़ ली कि कुछ लोग लीमू को सर से वार कर फेंकते हैं, कहते हैं ये बल्लाएं टलती हैं इन चीजों से, पढ़ क्यों नहीं लेते हम, इल्म क्यों नहीं ले लेते? इस तरह के मुश्किलात में पड़े हुए लोग याद रखिए डिप्रेशन में जाएंगे, परेशानियों में जाएंगे, वहम हो जाएगा हर वक्त वहम। क्या आपने नहीं सुना वह फुलां बुजुर्ग थी और घड़े का पानी हिलता देखती थी तो वहम करती थी? यानी हमने सुनी भी ऐसी बात, अल्लाह सबको बख्शते जो चले गए, भोले लोग थे, मासूम थे, लेकिन किसी सास के बारे में ये मारूफ है कि वो घड़ों में लोग पानी रखते थे उस दौर में, तो आके देखती अगर पानी हिल रहा था तो शोर मचा देती थी, मेरी बहुओं ने इसमें तीर तावीज डाल दी है, अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। जो वहमी शख्स होता है, मैंने ऐसे चंद लोगों को करीब से देखा है, मैं सोचती हूँ कि जिंदगी अजीरन है उनकी, ना वो पत्ता भी हिलता देखे, दरख्त भी हिलता देखे, पर्दा घर का हिलता देखे, कहते हैं कोई जिन आया हुआ है, कोई भूत आया हुआ है, प्रीत आई हुई है। यानी ऐसी ही फैमिली में जो मैंने किसी को देखा कि हर वक्त की बीमारी उनके घर में, तो जब बीमारी होती है पहले लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर ना जवाब दे दें तो फिर वो पहले किसी पीर साहब के पास जाते हैं या किसी रूहानी मालिज के पास जाते हैं, वो किसी मालिज के हाथ चढ़ गई, बहुत अच्छी खातून है, लेकिन वहम प्रस्ती का या लाइलमी का क्या इलाज हो सकता है? हमारे यहाँ तो दीवारों पर लिखा होता है, आप जरा पंजाब में सफर तो करें, रूहानी आमिल नीचे फोन नंबर लिखा होता है, डॉक्टरों से थक चुके हैं तो आइए अब हमसे जरा लूटें, हम आपको लूटते हैं। तो वो एक बुजुर्ग के पास पहुंच गई कि वजह क्या है, तो उनको क्या बताया उस बुजुर्ग ने, नोट करिएगा, कहते हैं असल में ये जो जिस जगह तुम्हारा घर है ना, उनका अपना घर था, सारी जिंदगी मेहनत कर करा के तो घर अपना लिया, तो वो कहती कहने लगे कि तुम्हारे इस घर के नीचे जिन रहते हैं और जिन आग जलाते हैं, उसका धुआं उठता है और उनको गुस्सा है कि तुमने उनके घर पे, तुम लोगों ने घर क्यों बना लिया, तो ये सारी जो मनहूसते हैं और तुम्हारे बच्चे बीमार, ये मसला वो मसला, ये इसलिए आ रहा है कि वो जिन तुमसे नाराज है। तो मैंने उनको खुद रोते है देखा, हाय अल्लाह ने घर भी दिया तो जिन्हों वाला ही दिया, ये सब वहम है, ये तोहम परस्ती है। किताब सुन्नत को छोड़कर मैं और आप नहीं जी सकते। आज भी सबसे बहादुर वो शख्स है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वख्शोनी वला तखाफुन, उनसे ना डरो मुझसे डरो। याद रखिए आपके अकीदे का आपकी पूरी जिंदगी पे गहरा असर होता है। कोई नफा दे नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा, सूरत अल-अनाम में भी है, सूरत ज़ुमर में भी आयत मौजूद है कि जब अल्लाह तुम्हें गुजर देना चाहे कोई नहीं रोक सकता। और आप अपनी जिंदगी में पलट कर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी वाक्य आपको ना याद आए, हर एक को अपना अपना, कि आपको एहसास हुआ कि वाकई जरर जो पढ़ना था वो पढ़ गया। माँ के हाथ से बच्चा गिर जाता है और चोट लग जाती है, और माँ बाप की जिंदगी में बच्चों को थपेड़े पड़ जाते हैं, और बच्चा पैदा हुआ, बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह उस बच्चे को बहुत दुनिया में इज्जत दे देता है। नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, मैं और आप अपने अकीदे की देन है। अगर मेरा मेरे मालिक पे यकीन है ना कि जो मेरे रब ने मुझे देना है वो कुछ छोड़ नहीं सकता। सूरह हदीद में तो अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया, फला तासोला माफा तकुम, ओ मुसलमानों जो तुमसे फौत हो गया, जो तुम्हारी जिंदगी में नुकसान हो गया, उस पर गम ना करो, फला तासो, गम खाना रंज लेना हर वक्त, हाय मेरे साथ क्यों हुआ। क्या आज आप देखिए बहुत सारे मुसलमान सिर्फ माजी में नहीं जीते, आप अपने ऊपर लें, मैं क्यों परेशान रहती हूं, मेरे हाथ से ये क्यों चला गया, वो नुकसान क्यों हो गया, मेरे शौहर का कारोबार क्यों डूब गया, मेरा बच्चा क्यों फौत हो गया, मेरी वहां शादी क्यों नहीं हुई, मुझे वो घर चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, ये सोच के गम पड़ ले मैं ना, ये जितना डिप्रेशन है ना, वल्ला ही ये सिर्फ खुद साख्ता खेल खिलौना है। बोलें कि मेरे मालिक ने चाहा, ट्राई योर बेस्ट, हदीस में आता है एक मोमिन कोशिश पूरी करे बुराई से रुकने की, खराबी से रुकने की, बीमारी से रुकने की, परेशानी से रुकने की, और उसके बाद कह दे जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। सब कुछ करा, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी रात को, आपको यकीन है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो अल्लाह एक मुहाफिज दे देगा। यानी इंशाल्लाह मैंने इसी मौजू की तैयारी की दौरान एक और टॉपिक सोच लिया, किसी जगह दर्स हुआ तो आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि मुसीबतें मुश्किलें आने से पहले क्या करें कि आई ना मुसीबतें। हमारा हाल क्या, बीमार हो जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं, बच्चे भी बिगड़ गए तो परेशान है, तो वो पूरा टॉपिक एक मेरे जहन में, बल्कि ये एक बुक भी इधर रखी हुई है, कब से मैंने इधर सोची हुई है किसी क्लास में पढ़ाऊंगी, अज़कार मसाइब, ये नई बुक बनी आई है अभी, कि मुसीबतों के अज़कार कैसे टले। देखिए ना कि अब आप सोचिए कि एक बॉडी गार्ड किसी के साथ आता है तो हम कहते हैं वाह उसके पीछे बॉडी गार्ड है, जरा एहतियात से बात करना, तो जिस पे अल्लाह फ्री का बॉडी गार्ड रख दे वो कौन है जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है। हम वो पेशबंदियां नहीं करते, आज हमारी जिंदगी में वो इतनी चीजें नहीं है। सिर्फ आपको इस बुक की मैं हेडिंग्स गो थ्रू कराऊं ना तो आप कहेंगे जल्दी से बताइए कहाँ करना है, मैं इसको अटेंड करूंगी। अल्लाह ने हमें इंश्योरेंस दी हुई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हर चीज का जिम्मा लिया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें रात को पढ़ लो, काफी हो गया, मर भी जाओगे तो काफी है, सारी रात की किफायत, कोई तहज्जुद छूट भी गई तो किफायत, हम कहते कौन पढ़े। और अगर कोई कह दे फलां वजीफे के नाम पे, इतनी दफा उल्टे खड़े हो के हम पढ़ने को तैयार। आज हमारा हाल क्या है, वजीफों के नाम पे एक एक आयत को हम हजारों बार पढ़ने को तैयार, गलत के सही। और 10 आयतों का एक लेसन होता है डेली, ऑलमोस्ट 10 से कम ज्यादा टॉपिक, शुरू में तो 5 हम उसका लफ्जी तर्जमा याद करने को तैयार नहीं है, हम उसकी तजवीज सीखने को तैयार नहीं है। जब तक हम मुसलमान इल्म दोस्त नहीं बनेंगे, हमारे घरों के ये मसले परेशानियां खत्म नहीं होंगी। आज फिर दोबारा इंसानियत किताब और सुन्नत को छोड़कर बेकार चीजों पे पड़ गई, और आज हमने भी सफर के साथ ऐसी चीजें शुरू कर दी कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं सोचती हूँ कि इस वक्त हमारी जंग दो तरफ है, एक तो हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल से लड़ रहे हैं ना, जो हमें वेस्टर्नाइज करना चाहते हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है लन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिय मिल्लत हम। वो तो चाहते हैं आप उनका लाइफस्टाइल अपना लें। वो है बेदीनी का फितना, अजमाइशें, हमारे बच्चे, उनके सोचे बदल रही हैं, उनकी सोचों में इल्हाद है, लेकिन उससे बड़ी गिरें जो पड़ी हुई है ना, वो हमारी उम्मत के दिलों पे ये दीनदारी के खुद साख्ता कॉन्सेप्ट की पड़ी हुई है। इसमें ये होगा, इस महीने की ये बात है, उसमें ये है, वो है, ये कर लो, वो कर लो, और सफर का महीना आ गया, बस खत्म। आपको पता है जिनके शादी हॉल्स हैं या होटल्स हैं, आप उनसे जाके पूछ लें, मुहर्रम और सफर दो महीने ऐसे हैं कि जिसमें वो बेचारे अपने हॉल्स की रेनोवेशन कर लें, वो उसके अंदर पॉलिश रंग कर लें, क्योंकि लोग आते ही नहीं। बिल्कुल वो जैसे आप देखिए कि ऐसे लगता है जैसे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक बदली छाई हुई है, बेहिसी की। बादल छाया जाता है ना तो सुस्ती होती है, ये महीने आते ही सोने का रेट कम हो जाता है। जाके चेक कर लें गोल्ड को, किसी से जानने वाले से पूछ लें। आम मारूफ बात है सुनारों के मुंह से कि मुहर्रम में और अब सफर में सोने का रेट गिरे, क्योंकि शादियां नहीं करनी, लोग खरीदते नहीं, लोग शॉपिंग नहीं करते, वो कहते नहीं इस तरह कर लिया तो पता नहीं हमारे बच्चों की शादी खराब है। और शादी के मौके पर हर वो अमल करना है कि कुल इंसान इन अल्जम ना होता इरा खुफी नकी, जो गले का फंदा बन जाए। देखिए अमल बुरा है हमारा, आप अल्लाह के दीन की हद तोड़ते हैं। आपकी बच्ची की शादी है, सर से पांव तक आप उसको सजाते संवारते, बहुत कुछ उसके साथ करते और ला के उसको स्टेज पे बिठा देते। क्या हर नजर मोहब्बत की नजर या नफरत की होगी? हर एक अपने एंगल से उसको उस वक्त देख रहा है ना। जब इतनी नजरें पड़ गई आपकी बेटी पे, क्या उसके अंदर मनहूसियत नहीं आ जाएगी? ये आज घर क्यों टूट रहे हैं? आज डिवोर्स रेशियो इतना ज्यादा क्यों है? आज जो हैं भी वो सच्ची खुशियों से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमारे अपने आमाल की नहुसत पड़ गई। एक टॉपिक है पूरा इमाम इब्ने कय्यिम की किताब से, मैंने कई दफा लेक्चर की सूरत में उसको कराया, गुनाहों के असरात। आप भी देखें, शायद लाइब्रेरी में तो बुक जरूरी होगी, इफेक्ट्स ऑफ सिंस। और उसमें ये था कि जब हम गुनाह करते हैं ना तो हम पे उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। पहला ये सर अगर आपको बता दूं तो आप मेरी बात की तस्दीक करने पे मजबूर हो जाएंगे। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्ला फरमाते हैं कि गुनाहों का पहला असर इफेक्ट बंदे पे ये आता है, इल्म का शौक खत्म हो जाता है, महरूमी इल्म से। आज इल्म की बात करें, यूं दुम दबा के लोग भागते हैं, बैठे बातें कर रहे हैं, वजीफे कर रहे हैं, दम कर रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हो जाएंगे। आप कहते हैं आए जरा थोड़ा सा लेक्चर ना सुन ले, वो नहीं बच्चों के वक्त हो गया, मुझे निकलना है, मुझे जाना है, मुझे करना है। घंटों के एतबार से हम महफिलों में बेतुकी बातें करने को तैयार हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कोई दीन की, कहते हैं ये नहीं हो सकता। आपको कहा जाए कि आइए दीन सीखिए, वहां जहां मर्जी चले जाएं, मैं तो नहीं कह रही कि यहां आए, आपका जहां दिल करता है, आपको जहां से मिलता है ले लीजिए। कितने जाते हैं, हमारी अक्सर सेटिंग्स चल रही होती हैं तो एक किसी मुल्क में हम बच्चों के एक ब्रदर मिले तो वो क्लास शुरू करना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की क्लास। तो उनसे जब मीटिंग्स हुई तो हमने कहा देखिए हमारा नूरुल कुरान का तो मेन थीम ये है कि इनलाइटन योर हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, तो आप कुरान की तफसीर शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि फिर लोग बहुत थोड़े आएंगे, फिर लिमिटेड बच्चे आएंगे। हाँ मैं इसको कोई स्टोरी टाइम कह दूं, इसको हल्का कह दूं, किटकैट कह दूं, तो बहुत लोग आएंगे। अब आप डिसाइड करें आपको ज्यादा को बुलाना है या थोड़ा सा को बुलाना है। आज मिजाज नहीं है, आज दिल खाली है हमारे। और आप देखिए मजे की बात देखें कि आज का दौर पढ़ा लिखा दौर है ना, दुनियावी एतबार से हम इंटेलेक्चुअल है। किसी का मैं वाक्य सुन रही थी तो एक माँ अपनी बेटी के साथ किसी जगह जाकर लाइन में लगी थी, बेटी को उसने डॉक्टर बनाना था तो उसी की को पेपर सबमिशन और वट कोई इसमें थी। तो जब लाइन में आए ना तो पीछे माँ थी आगे बेटी थी और कोई और भी लोग थे, तो छींक मारी किसी ने जो बेटी के पीछे खड़ा था। तो माँ बेटी को कहती है चल 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 अब निकल चल, नहीं देना तुझे मैंने इंटरव्यू नहीं देना। क्यों? कहती है तेरे पीछे से छींक मारी है ना, ये मनहूसियत है। तो माँ कहती है बेटी माँ को कहती है कि अम्मी आपने मुझे खुद डॉक्टर बनाया और आप मुझे पता छींके क्यों आती हैं, तो क्या आप समझती हैं कि डॉक्टर बन के भी मैं यही काम करूं? आप देख लीजिए जूती पे जूती चढ़ गई तो क्या होगा, कितना आम कल्चर है हमारा। जूती पे जूती पड़ी तो सफर होगा, ट्रेवलिंग होगी। कहां लिखा ये बात? उल्टी जूती रखना नाउज़ बिल्ला, ये अल्लाह जी को हम उल्टी जूतियां दिखाते हैं, कितना मशहूर है ये। मुझे एक सिस्टर बता रही थी अभी भी इधर कहीं होंगी कि मैं तो सारा दिन कहीं भी चली जाऊं तो मैं जूतियां सीधी करती रहती हूं कि जूती अल्लाह को हो रही। अल्लाह के बंदो इस जूती को पहन के आप नमाज पढ़ सकते हैं, उल्टी जूती का कोई ताल्लुक नहीं, जूती पे जूती चढ़ी, आटे का पेड़ा घूमा और नीचे गिर के मेहमान आएंगे, कौवा दीवार पे बोला मेहमान आएंगे। अब देखिए, बेअक्ल हराम जानवर कौवा हलाल नहीं है, अकल भी नहीं है, काला बेचारा काय काय करता रहता है, क्या उसको गैब पता कि मेहमान आएंगे? और अगर आपने कौवे की काय काय से ये सोच लिया कि आज मेहमान आएंगे, तो फकद अशरका, हदीस के लफ्ज है, जिसने किसी तोहम परस्ती या वहम परस्ती की वजह से होते हुए काम को छोड़ दिया, क्या हुआ? शिर्क किया। आपने सूरह बकरा पढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से, मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं आप में अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्या पढ़ा है सूरह बकरा में? जब अरब लोग घर से निकल जाते थे तो क्या होता था? एक दफा घर से निकले एहराम बांधकर, कोई बात याद आ गई तो वापस आए, जैसे आप देखे गाड़ी में सामान रखने है, 4 दफा तो वापस आती है, कई दफा तो बच्चा ही भूला होता है ना, जल्दी में जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं। अरब लोग जब एहराम बांध लेते थे ना, तो फिर किसी वजह से वापस घर से आना होता ना, तो नहीं जाते थे, क्यों? कहते थे वो घर की चौखट है ना, जैसे दरवाजे की चौखट है, कहते इसके नीचे से गुजरेंगे और एहराम की हालत में मेरे सर पे कुछ नहीं लगना चाहिए। तो इलाज क्या ढूंढा? फिर दरवाजे से नहीं, फिर घूम के पीछे से छत के रास्ते से अंदर कूदते थे। अल्लाह ने कहा बे तुक्के काम ना करो। आज क्या मुसलमानों में नहीं, मैं खुद जानती हूं ऐसे लोगों को कि कोई जा रहा है और पीछे सुबह मियां काम पे जा रहे हैं ना, तो बीवियों की तो बस ही आदत होती है, पीछे से बोलती रहती हैं, तो पीछे से आवाज दी बोले आई, कहते मुझे पीछे से ना बुलाया करो, ये मेरे पीछे से तुम बुलाओगी तो ये होगा वो होगा। कहां लिखा है, किसने कहा, क्या हुआ? बेटियों की शादियां नहीं करते, शादी हुई हो तो रुख्सती नहीं करते, सफर नहीं करते, और सफर अगर कुछ हो तो कहते हैं कि ये करना ही नहीं है, अगर किया तो इसमें फायदा कोई नहीं होना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हदीस नोट कीजिएगा, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आपने फरमाया अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة। मुश्किल लफ्ज है, आप उर्दू में समझ लें। हजरत अबू हुरैरा से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्ज का मुतद्दी होना। पहले तो मैं आप सबको भी इस पे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं, मुतद्दी क्या होता है? कंटेजियस इंग्लिश में, और उर्दू में तो आप जानते हैं, एक का दूसरे से लग जाना, ये नहीं होगा। आज लोग आप देखिए किसी को नहीं मिलते, कहते नहीं मुझे नजला हुआ है, आप ना आइए। अच्छा जी नहीं, मेरे घर ना आए, फिर मेरा मेरा बच्चा ना आए दूसरी जगह, इस्लाम इसको नहीं मानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंटों के बाड़े में जब एक ऊंट जाता है तो क्या दूसरे ऊंट भी उससे बीमार हो जाते हैं? साहबा का ख्याल था कि ऐसा होता होगा, तो आपने फरमाया ये बताओ कि इसकी वजह से तो दूसरे को लगी, दूसरे से तीसरे को लगी, मान लेते हैं, पहले को कैसे लगी थी? जिस तरह पहले को लगी थी वैसे ही दूसरे को लगती है। एहतियात करें, लेकिन अकीदा ये रखें कि अल्लाह के हुक्म से लगी। मतलब वाकई आप किसी बीमार को मिले और आपको सेम वो बीमारी हो गई, तो भी यही कहें कि ये मुझे अल्लाह के हुक्म से लगी, या फिर जो मैंने शुरू में आयत आपके सामने पढ़ी थी कि जो बुराई पहुंचती है तुझको तेरे नफ्स की वजह से पहुंचती है। और ये भी एक बुनियादी असूल याद कर लें कि वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत तकलीफ परेशानी पहुंचती है ये तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा। माएं अपने बच्चों को डांटती हैं, बच्चा खांसी करता है, माँ कहती और आइसक्रीम खाओ, बच्चा कहता है ठंड लग गई तो माँ कहती और जैकेट के बगैर जाओ, कहती है ना, बस यही असूल रख ले। हमें जो तकलीफ दुनिया में आती है ना, ये हमारे किसी अमल की वजह से आती है, हमारे लिए ये चीज दुरुस्त नहीं होती है। तो ये जो लफ्ज इस हदीस में आता है ना कि ला तीयरा, ला अदवा वला तीयरा, तीरा क्या होता है कि जब वही जो मैंने आपको बताया कि परिंदे को भगाते थे या हिरन को उठाते और जिधर जाता राइट साइड पे जाता तो उसको नफा मंद समझते और दूसरी तरफ जाने वाले को बुरा समझते, अल्लाह के नबी ने इससे रोक दिया। ऐसे कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। फिर इसी तरह हामा, आपको पता क्या लफ्ज था? वला हामा, अरब लोगों का एक असूल था, एक शख्स को जब कत्ल कर दिया जाए ना तो उसकी खोपड़ी, ये जो होती है स्कल, इसके अंदर से एक जानवर निकलता है जिसका नाम हामा है, तो वो हमेशा फरियाद करता रहता है मुझे पानी दो मुझे पानी दो, और जब तक उसके घर वाले उसके कातिल से बदला ना ले लें वो फरियाद नहीं करता रहता है। इसी से फिर हामा का लफ्ज उल्लू के लिए। अब ये लफ्ज थोड़ा सा उल्लू को भी आज डिस्कस कर लेते हैं इस दीनी महफिल में। हमारे पाकिस्तान में लफ्ज उल्लू क्या है? बेवकूफी है कि नहीं? उल्लू बन गए, उल्लू बना दिया, उल्लू का बट्ठा, पता नहीं ये क्या लफ्ज है, मुझे तो समझ नहीं आता। आपको पता है जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका गई, मैंने बाज लोगों की टी शर्ट्स के ऊपर उल्लू बने हुए देखे, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हमारे यहां तो ये बहुत बड़ा समझा जाता है, तो इन्होंने बताया कि अमेरिकन उल्लू जिसको ऑल कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं उल्लू को बहुत अकलमंद समझते हैं, यानी आपने उसको बेवकूफ कह दिया, उसको उधर हमारे कल्चर में गधा किसको कहते हैं, गधा बेवकूफ को, तो किसी मुल्क में दुनिया में हो सकता है लोग गधा अकलमंद को कहते हो। अब उल्लू मनहूस है, उल्लू का रात को बोलना, चमगादड़ों को बोलना, चिड़िया का बोलना, बिल्कुल इसमें इस्लाम का कोई दस्तूर नहीं। अरब कहते थे कि जिस घर में उल्लू आकर बैठ जाए बस वो घर वीरान हो जाएगा और उसके घर में जरूर अब कोई मरेगा। उल्लू बोल रहे हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं बिल्ली म्याओं म्याओं कर रही है, बिल्ली की आवाजें रोने की आ रही है। बस औरतें, मैं जानती हूं उनको, कहती बिल्ली के रोने और इनकी बातों से ना मुझे कुछ होता है। तो ये एतकाद आज हमारे जमाने में भी पाया जाता है। ये सब शिर्क है, ये छोटी बातें नहीं है। देखिए आप कहते हैं क्या हम इनोसेंट सी बातें हैं, खेल ही रहे हैं ना, नहीं ये शिर्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुत्ते बिल्लियां उल्लू ये इनको नहीं पता, गैब अल्लाह को पता है, किसी दूसरे को इसका नहीं पता। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे आपको इस्लाम दे दिया, क्लैरिटी के साथ दे दिया, याद रखिए जो होना है वो होना है। अब थोड़ा सा मैं इसको तकदीर के टॉपिक से जोड़ती हूँ और आप लोग तैयार रहें मुझसे सवाल पूछे, बातें करें, थोड़ा सा आपका इनपुट लेकर फिर इसका आखिरी हिस्सा शुरू करूंगी। और वो क्या है कि तकदीर के साथ इसका क्या ताल्लुक है? आपको मैंने पिछले महीने के लेक्चर में भी तकदीर के साथ जोड़ा था, मुहर्रम के लेक्चर को जोड़ा था, अगर आपको भूल गया तो जाके उसकी रिकॉर्डिंग सुन ले। यहां थोड़ा सा हर महीने के साथ आप देखिएगा तकदीर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैं अक्सर सोचती हूं कि हमारी हमारे कल्चर में खराबी आई ही असल में तौहीद के कमजोर होने पे। मैं अक्सर कहती हूं कि हम सब कुछ छोड़कर ना लोगों को सिर्फ और सिर्फ तौहीद की बारीकियां और अल्लाह के नाम और उस पर गौर व फिक्र सिखा दें तो बहुत सारी मसले हल हो जाएंगे। याद रखिए जो तकलीफ आपके नसीब में लिखी है वो आएगी। हर हादसे का, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, सबब बन जाता है, रीजन हो जाती है, लेकिन वो होना है। हिंदुओं में हमारे कल्चर में बहुत सारे मिथ जो है ना वो इंडियन कल्चर से भी आए हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं कि शादी करने से पहले दिन और वक्त जब डिसाइड करते हैं ना तो अपने पंडितों के पास जाते हैं, जैसे मजहबी रहनुमा कह लीजिए और मौलवी साहब जो हमारे कल्चर में कह लीजिए। अगर रात 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, वो जायचा निकालते हैं, एग्जैक्टली बताएंगे कि आपकी शादी आपके वो आग के जो फेरे ना ये रात 12:30 बजे होने होंगे, वल्ला ही वो सारा काम छोड़ देंगे लेकिन 12:30 बजे ही वो घड़ी पर देख कर फेरे देंगे। क्यों? उनका गुमान है कि 12:30 की बजाय अगर 12:15 शुरू कर दिया या 1:45 पे चले गए ना तो ये शादी नहीं निपेगी, बदफाली लेते थे। फिर इसी तरह आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में बड़ी दिलचस्प बात है, इसका मैं खुद भी तजुर्बा कर चुकी हूं। 13 का लफ्ज़, 13 का आदत, ये मनहूस समझा जाता है। किसी भी मुल्क में हम लोग वो जो अंदर जाते हैं ना इमिग्रेशन में से गुजर रहे थे, सामान दे दिया और उसके बाद पासपोर्ट कंट्रोल जो होता है तो वहां बहुत सारे होते हैं जहां हैंड कैरी चेक होते हैं कह लीजिए उसके ना, तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट था अमेरिका की शायद कोई जगह थी मुझे अब सही याद नहीं है, तो इतनी लंबी लाइन थी 1-2 जैसे आयल तो कोई इधर से गुजर रहे हैं जिनको जाना है, तो वहां खड़े होके बंदे ने सिर्फ इधर उधर देखना ही होता है, रश में फंसे हुए थे। तो मैंने गौर से क्या देखा, 1, 2, 3, 12 है, आगे 13 नंबर आयल नहीं है, उस पर 14 लिखा हुआ है। मुझे लगा जी गड़बड़ है कुछ, ये शायद मैं नहीं सही पढ़ रही या 13 कहीं और होगी। तो वहां खड़ा एक शख्स था तो जब मैंने इनको कहा तो इसने सोचा, कहता यस दे डोंट थिंक 30 नंबर इज राइट, 13 नंबर वो लिखते ही नहीं। कनाडा में आज भी वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं कि जहां लिफ्ट के अंदर 13 नंबर नहीं होता, क्यों? कि 13 का लफ्ज बुरा है। अब पैदा हो गया कोई बंदा 13 को तो लेट कराएंगे ना उसको, फिर वो कहेंगे नहीं आज डिलीवरी नहीं करनी, 13 को ये पैदा हो गया ये गलत है। ये सब चीजें गैर इस्लामी है। देखिए अब आप यहां से देखिए 13 को एक फौत हो रहा है तो 13 को पैदा भी हो रहा है। देखिए ये जो बातें बनती हैं ना, आप सोचिए क्यों बनती हैं? कभी इत्तफाकन ऐसा हुआ होगा किसी के घर में, वाकई सफर के महीने में एक मौत हुई, फिर दूसरी भी हो गई, फिर तीसरी भी हुई, उसे बातें शुरू हो गई। ये वल्ला ही ये बातें कोई लोग जानबूझ के नहीं बनाते, ये एक से एक वहम से वहम होता है। मसलन आप देखिए शवाल का महीना, आप शवाल का लफ्ज सोचे तो कैसा लगता है, दिल खुश होता है ना, क्यों भला? नए नए रोजे छुटे होते हैं, है? मनहूस समझते थे। अरबों का एक मिथ था कि शवाल के महीने में शादी नहीं करेंगे, और आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी शादी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शवाल के महीने में हुई। क्यों की? इसलिए की हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि मेरी शादी भी शवाल में हुई और रुखसती भी शवाल में हुई, यानी कई साल का बीच में फर्क है, और अगर ये मनहूस होता तो मुझसे ज्यादा नसीबे वाली कौन औरत है। ये हजरत आयशा कहा करती थी कि अगर शवाल की, और वाकई अगर आपके पास चॉइस हो ना अपने बच्चों बच्चियों की शादियां या आप में से किसी की, तो शवाल का महीना चूज करें। ये जब आप किसी चीज को गलत को सही करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी हो जाती है, तो ये चीजें निकाल दीजिए, ये बात दुरुस्त नहीं होती। अच्छा बुध, मजे की बात, हमारे यहां क्या कहते हैं, बुध कामसुद, वेनसडे को, बुध को हम अच्छा समझते हैं, जबकि आपको पता है कि अरब कल्चर में बुध के दिन को मनहूस समझते थे। और वो क्यों समझते हैं, एक कौम पर अजाब की कौमे साले थी, कौमे साले पे अजाब जो शुरू हुआ था ना वो बुध को हुआ था, जो मेरा पहले दिन उनके रंग चेहरों के बदल गए, दूसरे दिन तीसरे दिन काले हुए, और फिर बिल्कुल ही जुमे को सुबह अजाब आ गया था उनपे। तो वो उससे उनके कल्चर में चल रहा है कि बुध का दिन अच्छा नहीं होता, जबकि हमारे यहां कहते हैं बुध बड़ा अच्छा काम है। अच्छा मंगल के बारे में भी कुछ कहते हैं हमारे कल्चर में, क्या कहते हैं, ना तो बुध अच्छा है तो ना मंगल बुरा है, सब कुछ एक जैसा है, ये सिर्फ आपके मेरे लिए। और ये जो माहे सफर के आखिरी बुध की सैर सियाहत है, बड़ी मजे की और बड़ी बेवकूफी की बात है। वैसे लोग क्या कहते हैं, जो लोग इसको मानते हैं, कहते हैं इस दिन नबी सल्लम को बीमारी से सेहत मिली और आपने गुस्ले सेहत फरमाया और सैरो तफरी के लिए मदीना से बाहर घूमने गए, तो लिहाजा सुन्नत समझते हुए सफर के आखिरी बुध को कारोबार बंद करके खूबसूरत कपड़े पहनकर सैरो सियाहत के लिए निकलते हैं, पार्कों और खेतों में जाते हैं और हलवे पूड़ियां खाते, गंदम को उबालते और गरीबों में बैठते और कहते ये सवाब है। सच बताइए, क्या ये बात सच हो सकती है? इसे अगला महीना कौन सा है? अगले महीने का लेक्चर के लिए अभी से मेरा दिल एक्साइटेड है कि वो तो इतनी प्यारी शख्सियत के नाम में महीना के जिसके नहीं, एंड पे आपको बताते हैं उसमें कुछ और भी डिटेल्स है हमारे पास। अल्लाह के बंदो, मुहर्रम सफर में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई थी, रबीउल अव्वल में तो आपका इंतकाल हो रहा है। आप सोचे ना, रबीउल अव्वल में इंतकाल हुआ तो ये सफर के आखिरी बुध को आपकी सेहत याबी की बात, क्या ये दुरुस्त महसूस होती है? बात बिल्कुल अपोजिट है। शैतान असल में आपकी खुशी मना रहा होता है आपके बीमारी के शुरू होने की। तो ये जो बात है ना कि आखिरी बुध को ये करना कराना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए आजादी में हुर्रियत है, आपको टाइज खुलती भी नहीं दिख रही, लोगों ने अपने दिमागों पे इतने बोझ रखे, पत्ता हिला तो ये होगा वो होगा ये होगा, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मैंने जो चीज वाकई महसूस की है कुरान और साथ साथ हदीस पढ़ने के बाद, हमारे कल्चर में खुद साख्ता इतने गम और मसले डाले हुए हैं लोगों ने कि आप देखें कि जीने वाले भी सही तरह जी नहीं पाते। तो पूरे दिल और यकीन के साथ जिए, बल्कि शादियां करें सफर में, तो कारोबार नए शुरू करें सफर में, इंशाल्लाह जो होना है वो होगा। अच्छा अब एक सवाल है, ठीक है थोड़ी सी भी बात करते हैं आगे, क्या इस महीने के नाते से कोई खास तस्बीहात या वज़ाइफ हैं? बस लोग इसमें नफिल पढ़ते हैं और खास तौर पे आखिरी बुध को चार नफिल पढ़ते हैं, और जिसके अंदर वो सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर, शायद कुछ दफा मेरे पास लिखा हुआ है, अगर आपको, मैं इस डर से नहीं बताना चाह रही कि आप शुरू ही ना कर दें, तो सुन रहे करेंगे तो नहीं, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। सफर की पहली रात नमाज इशा के बाद कहते हैं हर मुसलमान को चाहिए कि चार रकत नमाज पढ़े, सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून 15 बार, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह 15 बार, फिर या का नाबुदु कई बार पढ़े, तो ऐसा शख्स जो है वो हर बला से महफूज रहेगा और अल्लाह उसको सवाब देगा। अब ये मेरे सामने हदीस करके लिखी हुई है, लेकिन ये मन घड़त है। इसी तरह सफर की आखिरी बुध को सुबह के वक्त गुसल करने, चाश्त के वक्त दो नफिल पढ़ने और हर रकत में फुला फुला पढ़े, ऐसा कोई भी वजीफा नहीं है। एक दो सवाल बना के मैं खुद ही आपकी मदद कर देती हूँ कि कोई औरत मनहूस होती है, कोई घर आप लेते हैं, इस्लाम में ये मनहूसियत का क्या तसव्वुर है? समझ आ रही है आपको बात? लोग बस कहते हैं हमने घर लिया, ये मिरास नहीं आया। अच्छा मैं यकीन करें कहते हुए कांप रही हूं कि मैं खुद एक खास अरसे में जानती हूं कुछ लोगों को, कहते थे कि रेड कलर की गाड़ी हम लेते हैं तो हमें रास नहीं आती, सुरख रंग की गाड़ी ली पहले एक्सीडेंट हो गया, फिर दोबारा कुछ अरसे बाद ली होगी सुरख ही थी वो भी शायद, तो उसमें क्या हुआ कि चोरी हो गई, तो उनका भी एक ना मिथ बन गया हुआ था कि सुरख गाड़ी रास नहीं आती। क्या आप लोगों ने भी ऐसे कभी सोचा? सफेद जोड़ा कपड़े, सफेद कपड़े दुल्हन को पहनाना, हमारे बड़े बूढ़े काले कपड़े सोख के कपड़े, काला कपड़ा ना पहनो क्योंकि सोग है, काबे का गिलाफ है काले कपड़े रंग का। अच्छा एक थी तो कहने लगी सब्ज जूता नहीं पहनना चाहिए, क्यों? कहते रोजे का मिंबर भी तो सब्र है, सब्ज है ना, तो मैंने कहा ये घास भी फिर सब्ज है, इसको आप काला कर दे, ये सब मैनमेड बातें। चूंकि इंडियन कल्चर में शौहर की वफात के बाद औरत जिसको वो बेवा को क्या बोलते हैं, विधवा हो जाती है, विडो इंग्लिश में आप कह लें, तो वो मैं फिर हमेशा व्हाइट कपड़े पहनती है ना। तो आज मैं अपने खानदान की कुछ दूर पार की बूढ़ी आंटियों को जानती हूँ, अपनी बहुओं को सफेद कपड़े नहीं पहनने देती, काला कपड़ा नहीं पहनने देती, कहती ये सोख का कपड़ा, बच्चे को खास कपड़े कुछ नहीं पहनने देते, ये तो अब वो ब्लू और पिंक का कॉन्सेप्ट चल पड़ा। पहले तो लड़कों को भी लोगों ने प्रिंटेड कपड़े पहनाए होते थे, तो इस्लाम में बरकत या तबारक का ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। इस पर एक दो चीजों को आपको मैं मेंशन करूं कि एक तो इस पर पूरा लेक्चर है बरकत के बारे में, बरकत ही उसका नाम है। मुझे आज भी याद है कि हमने अटलांटा में किया था, एक किसी सिस्टर के घर में, डिटेल से मैंने उनको बताया था, आपको भी खुलासा बताती हूँ कि बरकत बारे का क्या कहते हैं, थोड़े का ज्यादा होना। अरब लोगों की जब ऊंटनी किसी जगह बैठ जाती थी ना, तो बैठ के उठती थी तो कहते थे ये बरकत है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपकी ऊंटनी बैठ के उठी तो वहां आज मस्जिद नबी बनी हुई है। फिर इसी तरह हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी के घर के आगे बैठ के उठ गई तो वो उनके लिए एक बाबरकत साबित हुआ था। और वैसे भी उनका बहुत सारा कल्चर जो है वो ऊंटों और इन चीजों के साथ जाता है। तो बरकत क्या होती है, थोड़े में अल्लाह ज्यादा कर दे। बरकत कहाँ से आती है, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। पूरी सूरह फुरकान आप देख लें, उसमें बरकत का बहुत दफा लफ्ज है। आपने घर खरीदा, अब देखिए बहुत कड़वी बातें करने लगी हूं मैं, पर मेरा फर्ज है। डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ मीठी गोलियां नहीं देता, कभी इंजेक्शन लगवाना पड़े तो लगाना पड़ता है ना। आप कहते हैं ये घर बरकत वाला मेरे लिए कि नहीं, बरकत बुलाओ इधर लोगों को, कुरान खानी करा दो, इधर 40 दिन तक सूरत बकरा पढ़ते रहते हैं, और कभी हम जैसों को लोग, यहाँ तो बहुत कम होता है, मुझे लगता है सबने जो घर लेने थे ले लिए हैं। अमेरिका में बहुत आम कॉन्सेप्ट है, होम वार्मिंग तकरीब कहते हैं, तो जी लेक्चर करा के दुआ कर जाए क्योंकि हमारा घर बरकत अलाओ। आपने घर लिया कैसे, कमाई कैसी थी, तरीकेकार ठीक था, उस घर में आइंदा से आपने और आपके बच्चों ने क्या देखना है, क्या चलना है, कैसे, ये कुल्ला इंसान इन अल्जम ना हो तो फी उनके। हलाल कमाई से अपने पाँव में चादर में पाँव रखते हुए आप एक कमरे का घर ले, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत देगा। नाफरमानियों के साथ ली दी चीजों में बरकत नहीं होती। फिर एक लोग हमें बरकत की मशीन समझते हैं, शादी से पहले एक दर्स कराते हैं, और वो भी अक्सर मेहंदी से एक दो दिन पहले, शादी शुरू हो रही है एक दर्स रख ले, छोटा सा दर्स और लंबी सी दुआ, क्यों, बरकत हो जाएगी और फिर आप जाएं, जल्दी जाएं, हम आपको खाना साथ देते हैं, आप जाएं, क्यों, वो ढोलक पार्टी आने वाली है, अब उन्होंने ढोलकियां बजानी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि फरिश्ते ना आए, शैतान खुश हो, नाफरमानी हो, दीन की हदें टूटे, तो क्या एक मौलवी साहब का जाके वहां दर्स कर करा देना बरकत से बरकत दे देगा उस चीज को, नहीं देगा। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आपके लिए। अच्छा, क्या कोई औरत भी किसी मर्द के लिए भागवान होती है, जिसको भागवान कहते हैं, और हम लोग क्या कहेंगे, बाबरकत। हिंदू फिल्मों में आप ये जुमला अक्सर सुनेंगे, जो सुनते हैं देखते हैं वो तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बड़ी बहू भागवान है, ये काली जुबान वाली। आप देखिए एक औरत है बेवा हो जाए, हिंदू कल्चर में वो किसी की शादी में नहीं जा सकती, वो सारे मेहंदी लगाते हैं, उसको पीछे कोने में रुखड़ा कर देते हैं। एक औरत का बच्चा अबॉर्ड हो जाए, किसी दूसरी औरत के बच्चे को देखने नहीं जा सकती। सुनी मैं ये बातें, हम सब में भी यहां से आ गई, ऐसा कोई मामला नहीं है। जवानी में एक औरत है वो बेवा हो गई, 3-4 महीने 10 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि इट्स फाइन, अब आप पहनने ओढ़े, सारी जिंदगी बेवा औरत को अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, कहते हैं लो जी ये तो अब ऐसी होती तो वैसे ना होती, वैसी होती तो ऐसे ना होते। तो इस्लाम मुझे आपको इन सारी चीजों से आजाद करता है। अच्छा, एक सवाल है कि जब चीजों की अपनी बरकत नहीं होती तो हम जब लिबास पहनते हैं, जैसे अगर आपके पास हिस्न और मुस्लिम बुक है तो उसके शुरू में दुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते या लिबास पहनते तो दुआ करते थे, आप लोग भी करते हैं कि नहीं, मैं आपसे ही पूछती हूँ। तो आप जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप उसकी दुआ ही नहीं करते, तो फिर आप मुझे बताइए कि आपको बरकत कहाँ से मिलेगी। ये देखिए दूसरी दुआ है हिस्नुल मुस्लिम बुक में, और मेरा नहीं ख्याल किसी घर में हिस्नुल मुस्लिम ना हो, ये इतनी खूबसूरत और ऑथेंटिक बुक है। दुआ के लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी हाजा, यानी मुराद ये कि ये कपड़ा हाजा सौ व रज़क़नी ही मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वतिन, के सारी तारीफ उस जात के लिए जिसने ये कपड़ा मुझे पहनाया और मुझे अता किया बगैर मेरी किसी कुव्वत और ताकत के। अब सवाल पैदा होता है कि आप कहते हैं कि ये कपड़ा आपने पहना और साथ ही ये दुआ करेंगे तो फिर बरकत होगी। यानी एक सवाल आता है जहन में कि मिसाल बाज लोग कहते हैं फलां कपड़े नहीं रास आते। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ कि सास ने शायद कई लाख लगाकर जोड़ा शादी का वलीमे का बनाया होगा, लड़की की उस दिन तबीयत खराब हो गई, जो भी कोई उसकी बीमारी की वजह होगी, तो वो अब वो कपड़े नहीं कहती कि मुझे इन कपड़ों से चिढ़ हो गई है। वो जोड़ा जो कई लाख का बना होगा उसने उस वक्त भी उतार दिया और अब वो बकौल उनके कि वो नहीं पहनती, कहती मैं अब ये कभी नहीं पहनूंगी क्योंकि इसको पहनना है तो या उसको बैड फीलिंग आती होंगी या मेमोरीज अच्छी नहीं आती होंगी। तो याद रखिए कपड़े में अपनी जात से कोई बरकत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो लेते ही हैं, लेकिन कुरान में आपको हजरत याकूब की मिसाल दी जाती है। हजरत इब्राहिम अलै हजरत यूसुफ अलै इस्लाम का कुर्ता उनको दिया गया और उनकी आंखों पर रखा गया तो उनकी बिनाई आ गई। लोग कहते देखा कमीज की करामत, ये पीर साहब की कमीज की भी कोई करामत होगी। तो आप देखिए कि याकूब अलैहि सलाम की आंखों की बनाई भी उसी कमीज को देख कर गई थी जो यूसुफ के बतन से उतार कर भाइयों ने लाकर दिखाई थी। कुर्ता तो पहले भी था, भी है, किसी चीज की कोई बरकत वरकत नहीं होती। काम क्या करते हैं आप, इस काम को करके कैसे करते हैं। इसी तरह जब नया कपड़ा पहने तो उसकी एक दुआ मेरे से दोहरा ही ले, आपको मुझे तो रोज इन कपड़ों की इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आमतौर पे जो रोज कपड़े पहनते हैं ना उसकी दुआ बरकत लेना चाहते हैं तो पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। लेकिन हम तो ज्यादा नए कपड़े पहनते हैं ना, किस किस को आती है नया कपड़ा पहनने की दुआ? और किसी को नया कपड़ा पहना देखकर दुआ देनी किसको आती है? तो फिर मैं तो यही कहूंगी ना कि फिर बरकत कहाँ से। ये मुझे लगता है कि मुझे वो जल्दी लेक्चर कर लेना चाहिए कि मुसीबतों को आने से ही रोक ले, ना कि आए तो मुश्किलों में पड़ जाए। ये सारी चीजें उसमें आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, आप मेरे साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसौतनीही असलुका मिन खैरिही व खैरी मा सुनिया लहू वाउज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिया लहू। इसका तर्जमा क्या हुआ कि अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफें हैं कि तूने ये कपड़ा मुझको पहनाया और मैं सवाल करता हूं तुझसे जो इस कपड़े में खैर है और जिस खैर के साथ इसको बनाया गया और इस कपड़े के शर से तेरी पनाह में आता हूं। तो अभी से एक आयत पे मुफस्सरीन बाज दफा बहस करते हैं कि देखो इस आयत को तो पढ़ के ऐसे लग रहा है कि कपड़े के अपने अंदर कोई बरकत या खैर है, तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। एक कपड़ा आप पहनते हैं आपको बरकत मिली दूसरे को नहीं मिली, इसका कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई उसमें देखिए एक मर्द अगर वो रेशम पहने तो कभी भी बरकत नहीं होगी, राइट? तो हमेशा फिर वही बात कहूंगी कि हर बंदे का आमाल नामा जो है वो उसके साथ लगा लिपटा है। तो अपने आप को इन सारी जकड़बंदियों से आजाद करें। इल्म का मैदान खुला है आपके मेरे लिए सबके लिए। जो थोड़ी सी जिंदगी रह गई है उसके अंदर मुझे आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। आज भी अगर आपके घरों में कुछ ऐसी बुजुर्ग खवातीन है जो भोलपने में, मैं यकीन करें बड़ी मोहब्बत और रिस्पेक्ट से कहती हूं कि जो हमारी बुजुर्ग खवातीन है नानियां दादियां सासें, वो ये कुछ करती दिखेंगी लेकिन उसकी वजह लाइल्मी है। आप उनको अच्छे तरीके से समझा दें और ये दुआ जो भी आपको मैंने बीच में बताई थी इसको साथ उनके पढ़ के ये दुआ पढ़ा दें कि अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक वला इलाहा इल्ला गैरुक। आपने फरमाया ये दुआ पढ़ ली जाए तो इंसान की जो पिछली जिंदगी के अंदर कमी बेशी हुई होती है वो दुरुस्त नहीं होती। और इस्लाम इन सारी चीजों पर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के शिर्क और तौहीद के साथ आ जाता है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपने आप को लेते हैं। इन्हें जो सीख है उसका खुलासा ये, ना कोई रंग मनहूस है ना मुबारक है और ना कोई दिन ऐसा है, और ये सारी जो मिथ है ऐसी चीजों को बिल्कुल इंसान अपने ईमान और तवक्कल के साथ यकीन रखे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। एक रिवायत अपने मसूद की है अबू दाऊद में, आपने फरमाया अतियरतु शिर्क बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। सलासन तीन बार ये बात कही आपने, वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युसिबुहु बित्तवक्किल। फरमाया कोई हमें ऐसा नहीं मगर उसे वहम हो जाता है और अल्लाह ताला तवक्कुल की वजह से इसे दूर कर देता है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करें, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात, ये चीजें कहाँ आती हैं तो इसको समझिएगा, हमारे दिल की तड़प क्या है, हमारी दिल की खुराक क्या है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, दिलों को अल्लाह की याद से सुकून मिलता है। जब बंदे के दिल में अल्लाह की याद और मोहब्बत होती है ना, तो उसके पास इन चीजों का वक्त ही नहीं होता। इसके बरक्स, जब दिल में ये सच्चाई निकल जाती है ना, तो उसकी जगह कैसे ली जाती है, जैसे वैक्यूम होता है ना, तो आप देखिए उसमें हवा आ जाती है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। अल्लाह ताला सूरत निसा 51 में कहते हैं कि अलम तर इलल लजीना उतू नसीब मिनल किताबी युमिनूना बिजिब्ति वत्ताहूत, कि क्या तुमने उन लोगों को देखा, यहूद की तरफ इशारा है, कि जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया मगर वो जिब्त और ताहूत पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या होता है? बेहकीकत, बेअसल, बेकार चीजें, शगुन लेना, जिसकी को वहमी बातें, कहानत, फालगिरी और तवहमात। और वो आपने सुना होगा वाकया कि एक शख्स कहते हैं कि मैं एक दफा तोते वाले के पास चला गया, तो वो तोते वाला पैसे लेकर फिर कहता था चलो अपना सवाल पूछो, तो ये तोता आपकी फाल निकालेगा। तो ये कहते मैं बैठ गया, मैंने कहता जी बाबू जी पूछे क्या सवाल है, तो कहता अपने तोते से बताओ कि ये तोते वाले की किस्मत कब बदलनी है, जिसको मैं पिछले 10 साल से यहाँ सारे शहर की मिट्टी और बसों का धुआं खाते देखता हूँ, इसकी किस्मत कैसे बदलनी है। पेट में हलाल के लुकमे डालें, गलत चीजें ना देखें। अगर आपकी आंखों ने कुछ गलत देखा, ये मनहूस होगा, डेफिनेटली मनहूस है। अगर आपके कानों ने कोई गलत चीज सुनी, गिपतें सुनी, गलत काम देखे, मान लीजिए कि ये आपके लिए मनहूस होगा। इसी तरह हर चीज, आपकी जुबान से कोई गिपतें फिसल फुसल जाती हैं, ये आपके लिए मनहूस होगा। अपने बच्चों को इसका यकीन दिला दें, बेटा झूठ बोला ना, आप देखना कोई आपको सजा मिलेगी, आपके साथ जो होगा वो होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीजें लेकर चलेंगी। और रिबाज लोग कहते हैं कि ये जो सितारों के असर से बारिश होती है, अल्लाह के नबी के दौर की बात है, सुलह हुदैबिया का मौका था, सुबह की नमाज आपने पढ़ी, बारिश हुई सारी रात को, फिर सुबह हो गई, तो आपने नमाज के बाद फारिग होकर कहा कि तुम्हें पता है कि आज इस बारिश की वजह से कुछ लोग ईमान वाले हो जाएंगे, कुछ जो है वो कुफर वाले हो जाएंगे। तो साहबा ने कहा वो कैसे, कहा जो कहेंगे कि अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई वो तो ईमान वाले, और जिसने फलां सितारे के असर से बारिश कही। अरबों का तस्वर था कि सितारे हम पे खुश होते हैं ना जब, तो ये बारिश बरसाते हैं। ये खुलासा था बुखारी की रिवायत का। तो सितारों से अपनी किस्मत को अच्छा बुरा करना कराना ये पसंदीदा नहीं है, और अल्लाह ताला आसान करे। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.